जिस तरह अग्नि काष्ठ में स्थित है किंतु वह काष्ठ से भिन्न रहती है, जिस तरह वायु मुंह तथा नथनों के भीतर स्थित रहती है किंतु उनसे पृथक रहती है, और जिस तरह आकाश सर्वत्र व्याप्त होकर भी किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी तरह जीव भी, जो भले ही इस समय भौतिक शरीर में बंदी है, उस शरीर का स्रोत होते हुए भी उससे पृथक है। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान ने बताया है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही शक्तियां उन्हीं से उद्भूत होती हैं। भौतिक शक्ति को भिन्ना प्रकृति अष्टधा, भगवान की आठ पृथक शक्तियां कहा गया है। यद्यपि आठ स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शक्तियां हैं जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार हैं, भिन्ना अर्थात भगवान से पृथक कही गई हैं, किंतु वे ऐसी हैं नहीं। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ से पृथक होती है, प्रतीत होती है, और जिस तरह नथनों से मुंह में से होकर निकलने वाली वायु शरीर से भिन्न लगती है, उसी तरह परमात्मा जीव से भिन्न लगता है, किंतु एक ही साथ वे भिन्न तथा अभिन्न होते हैं। यही श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदाभेद तत्व का दर्शन है। कर्म फलों के अनुसार प्राणी भगवान से पृथक प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह भगवान से घनिष्ठता पूर्वक संबद्ध रहता है। फलस्वरूप भले ही इस समय हम भगवान द्वारा उपेक्षित लगें, लेकिन वे हमारे कार्यकलापों के प्रति सदैव सजग रहते हैं। अतएव प्रत्येक परिस्थिति में हमें भगवान की श्रेष्ठता पर भी आश्रित रहना चाहिए और उनके साथ अपने घनिष्ठ संबंध को पुनरुज्जीवित करना चाहिए। हमें भगवान की सत्ता तथा नियंत्रण पर आश्रित रहना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो यमराज द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ श्लोकों में यमराज बतला रहे हैं कि किस प्रकार से आत्मा और शरीर अलग अलग हैं और हमें शोक नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य में आज के श्लोक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, कहना चाहिए कि ये विषय सारे भागवत का सार है। भागवत में 10 विषय हैं। अत्र सर्व विसर्गो च स्थानम पोषणमुत्थया ईशनु कथा मनुमंत्रा मुक्ति निरोध आश्रयः। ये 10 विषय भागवतम के हैं, लेकिन आचार्य समझाते हैं कि बाकी के सारे 9 विषय केवल एक विषय को समझाने के लिए बतलाए गए हैं, और वो है आश्रय, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय। और श्रील प्रभुपाद यहाँ इस तात्पर्य में समझा रहे हैं कि हमें भगवान पर आश्रित होना चाहिए। और क्या कारण है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि भगवान हमसे अलग नहीं है, हमारा भगवान से एक घनिष्ठ संबंध है। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी चाहिए। इस संबंध को भूलने के कारण हम इस भौतिक जगत में अलग अलग संबंध स्थापित करते हैं। यहाँ पर कई उदाहरण इस श्लोक में देकर यमराज समझा रहे हैं, जो महाजन हैं स्वयं, इसलिए इस ज्ञान को बड़ी अच्छी तरह से उदाहरण दे देकर समझा रहे हैं कि किस तरह से भगवान और जीव अलग नहीं हैं। चैतन्य महाप्रभु बतलाते हैं कि भगवान और जीव एक ही हैं और एक ही समय में अलग भी हैं, जिसे अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। तो यहाँ पर इस शरीर के विषय में, जिस पर हमें शोक नहीं करना चाहिए, यमराज सिखला रहे हैं। और इन विषयों से, इन ज्ञान से हम भगवान की ओर जा सकते हैं, भगवान का आश्रय ले सकते हैं। नहीं तो ये जो शरीर, ये जो भौतिक प्रकृति है जिसका वर्णन प्रभुपाद कर रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, केवल हम इसी में रहेंगे, लेकिन इसी को अगर भगवान की सेवा में लगाएं तब हम बड़ी आसानी से इस भौतिक जगत को, इस भव सागर को पार कर सकते हैं। भगवान स्वयं भागवत के 11वें स्कंद में इस चीज को बतलाते हैं। वो कहते हैं, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभास्वतेरितम पुमान भवाद्भीम न तरेत स आत्महा। वो कहते हैं कि ये जो शरीर है नृदेहम, ये जो देह है, ये सुलभम प्रकृति के नियमों के द्वारा अपने आप जीव को मिलता है। हम सब जानते हैं कि जीव 84 लाख योनियों में अलग अलग शरीर धारण करते हैं, तो जैसे जैसे जीव की चेतना विकसित होती है जीव अपने आप को निचली योनियों से ऊपर की योनियों में पाता है, और ये प्रकृति के नियमों के द्वारा होता है, कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। निचले स्तर के जो योनियां हैं वो प्रयास नहीं करती कि हम अपने आप को ऊपर ले जाएं। एक पशु शरीर में उन्हें तो ज्ञान भी नहीं होता कि कैसे उन्हें ऊपर जाना है, या उन्हें ऊपर भी जाना है या ऊपर नीचे की योनियां हैं, ये सब उन्हें ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी प्रकृति के नियमों के अनुसार जीव एक चेतना से दूसरी चेतना में अपना विकास करता रहता है। ये 84 लाख योनियां ये चेतनाओं का स्तर है। जितना कम आवरण चेतना पर होता है उतना ज्यादा बड़ा हुआ जीव माना जाता है, या उतनी उसकी प्रगति होती है। बदलाया जाता है कि जैसे जैसे नीचे से जीव ऊपर आता है उसकी चेतना का आवरण कम होता जाता है, और सर्वोच्च अवस्था में सर्वश्रेष्ठ अवस्था वो है परमहंस अवस्था, जहां पर उसकी बुद्धि पर, उसकी चेतना पर कोई आवरण नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त धीरे धीरे होते हैं प्रकृति के नियमों के अनुसार, तो मनुष्य शरीर तक प्रकृति के नियम जीव को लेकर आते हैं। इसीलिए नृदेहम सुलभम, लेकिन साथ ही साथ सुदुर्लभम, और बहुत दुर्लभ भी है ये मनुष्य शरीर। क्यों दुर्लभ है? बड़ी सरलता से मिलता है, और भी जैसे अन्य जीवों के शरीर हैं ऐसे ही मनुष्य का भी शरीर है, तो उनमें अंतर क्या है, दुर्लभता क्या है? दुर्लभता है कि इस शरीर में मनुष्य अपने आप को इस भवसागर से पार करा सकता है, मनुष्य इन योनियों के चक्कर से छूट सकता है। इसीलिए बताते हैं आगे कि ये जो मनुष्य शरीर है, हालांकि सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम, बहुत सुंदर नाव के समान है, और ये नाव जिसको ये शरीर का रूप मिला है, और इस नाव के लिए एक कैप्टन चाहिए, एक कर्णधार चाहिए। इसीलिए कहते हैं भगवान गुरु कर्णधारम, इस नाव को चलाने वाले एकदम दक्ष उसके नाविक हैं गुरु। और फिर अगर नाव मिल गई है, एक चलाने वाला मिल गया है, मगर उसके लिए साथ में हवा अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि अगर कितना ही दक्ष व्यक्ति क्यों ना हो, अगर अनुकूल हवा नहीं है तो वो कैसे नाव को चलाएगा। तो इसीलिए भगवान बताते हैं मयानुकूलेन नभस्वतीरितेम, कि मेरे जो निर्देश हैं, मेरे द्वारा दिए गए जो आदेश या शास्त्रों में जो निर्देश हैं, जो ज्ञान है, ये उस अनुकूल हवा के समान है जो इस नाव को, इस शरीर रूपी नाव को गुरु की अध्यक्षता में बड़ी सरलता से पार ले जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसका उपयोग नहीं करता, पुमान भवाद भीम न तरेत, अगर कोई इस नाव के द्वारा इस भवसागर को पार नहीं करता, न तरेत, तो वो उसको क्या कहते हैं, स आत्महा, वो आत्मा का हत्यारा कहलाता है, अर्थात वो आत्मा की हत्या कर देता है। वैसे तो भगवद गीता में भगवान ज्ञान देते हैं कि आत्मा को कभी काटा नहीं जा सकता, कभी भिगोया नहीं जा सकता, उसको सुखाया नहीं जा सकता, कोई शस्त्र उसको काट नहीं सकता, और वो मरता नहीं है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो। लेकिन फिर भी आत्मा की हत्या हो सकती है, आत्मा की हिंसा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति उसे भगवान से दूर ले जाता है, भगवान के आश्रय में नहीं ले जाता, तो वो आत्मा की हत्या कर रहा है। तो इसीलिए इस श्लोक को हम लोगों को बड़े ध्यान से अपने हृदय में रखना चाहिए, क्योंकि इस श्लोक में बतलाया गया है कि तीन चीजें, ये भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा, भगवान का वरदान हमें मिली है। पहली, ये मनुष्य शरीर जो एक नाव के समान है। दूसरा, उसको चलाने वाला एक दक्ष नाविक गुरु। और तीसरा, भगवान के द्वारा दिए गए शास्त्र जो बहुत ही अनुकूल हवाओं के समान हैं, जो हमें इस भवसागर से पार ले जा सकते हैं। तो इन तीन वरदानों का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो हम लोगों की स्थिति उस व्यक्ति के समान होगी जिस व्यक्ति को भगवान ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर तीन वरदान दिए, उससे कहा कि आपको जब भी इच्छा हो आप तीन वरदान मांग लीजिएगा। उन्होंने कहा कि उनको पासे दिए दो, कि आप पासे फेंकिएगा और वरदान मांगिएगा, जब भी आप वरदान मांगेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इस व्यक्ति को दरअसल एक तकलीफ थी, इसको और इसकी पत्नी दोनों की नाक बहुत विचित्र थी, इसीलिए तपस्या कर रहा था कि किसी न किसी तरह हम अपनी ये जो नाके हैं उनको सुंदर बना लें। तो तुरंत आए और पत्नी से कहने लगा कि हम बहुत सारा धन लेते हैं। पत्नी ने कहा, धन लेकर क्या करना है, पहले सुंदर नाक लेते हैं। तो उसने पासा फेंका और उसके बाद उन्होंने जल्दबाजी में, क्योंकि बहुत उत्साह था, तो उन्होंने कहा कि हमारी सुंदर सुंदर नाके आ जाएं, और भगवान ने वरदान पूरा किया। तो इंद्र के सारे शरीर पर आंखें हैं और इन दोनों के सारे शरीर पर नाकें हो गईं। और इस तरह से एक वरदान व्यर्थ गया। फिर दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि हमारी सारी नाकें चली जाएं, तो वो वरदान भी भगवान ने पूरा किया। तो उनके शरीर से जितनी नाकें थी वो सब चली गईं, जो उनकी असली नाक थी वो भी चली गई। और फिर तीसरा वरदान उन्होंने मांगा कि हम जैसे थे वैसे ही फिर से हो जाएं, क्योंकि नहीं तो लोग बहुत बाहर जाकर बात करेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि कैसे लोग हैं, भगवान ने तीन वरदान दिए और इन्होंने केवल नाक लेने और नाक छोड़ने में, गंवाने में बिता दिए। तो इसी तरह वो आदमी उसी स्थिति में रहा। इसी तरह हम लोग हैं, हमें भी ये तीन वरदान भगवान के प्राप्त हैं, लेकिन अगर हम इनका उपयोग ना करें तो हमारी भी स्थिति इस भौतिक जगत में बनी रहेगी और हम लोग आत्महा कहलाएंगे, आत्मा के हत्यारे। और ईशोपनिषद बतलाता है कि अगर कोई व्यक्ति आत्मा की हत्या करता है तो असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तामस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनोजनः। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बहुत बड़ा नोबेल प्राइज मिला हो, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हो, बहुत धनवान व्यक्ति हो, ये के कोई भी क्यों ना हो, अगर वो आत्मा की हत्या करता है तो ऐसे लोकों में जाएगा जहां ना सूर्य है, ना ज्ञान है, और कई वर्षों तक, कई हजारों वर्षों तक उसको वहां पर कष्ट भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान बताते हैं कि इन तीनों वरदानों का उपयोग करना चाहिए, गुरु की शरण जाना चाहिए, जिससे हम लोग ये ज्ञान ले सकें कि कैसे भगवान का आश्रय हमें लेना है। और इस तरह से यहां पर जो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हम लोग भगवान के ही ऊपर आश्रित रहने चाहिए और उनकी सत्ता को स्वीकार करना चाहिए, इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये कब होगा, जब हम ये जानेंगे कि हमारा भगवान से घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध को नहीं जानेंगे तो इस भौतिक जगत में संबंध बनाएंगे, लेकिन भगवान का कितना घनिष्ठ संबंध है, प्रभुपाद यहां पर तात्पर्य में घनिष्ठ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। केवल संबंध नहीं है, संबंध तो है ही, लेकिन घनिष्ठ संबंध है, आत्मीयता का संबंध है। और कैसा घनिष्ठता है, ये हम लोग महाभारत के एक उदाहरण से देख सकते हैं। जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास आए थे, धृतराष्ट्र के पास आए थे, तो उस समय दुर्योधन ने प्रयास किया कि हम कृष्ण को अपनी ओर ले लें। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी कृष्ण के लिए, लेकिन उनके मन में यह नहीं था कि कृष्ण हमारी ओर आ जाएं या हम कृष्ण को प्रभावित कर लें। वो जानते थे कि कृष्ण प्रभावित नहीं होंगे, कृष्ण हमारा आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे, यह दुर्योधन को पता था। और इसीलिए दुर्योधन ने इतना विशाल व्यवस्था की थी कि कृष्ण उसको स्वीकार नहीं करें और तब वो ये कह सकें कि कृष्ण पक्षपात करते हैं। हम लोग इस अध्याय के पहले भी पढ़ रहे थे कि कैसे बहुत सारे असुर भगवान पर ये आरोप लगाते हैं कि भगवान पक्षपाती हैं। तो दुर्योधन भी चाहता था कि कृष्ण मेरे इस व्यवस्था को ठुकरा दें और फिर मैं कह सकूं कि ये व्यक्ति पांडवों का पक्षपाती है, इसलिए हम इसकी कोई बात स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। भगवान को उन्होंने बुलाया और भगवान से कहा कि हमने आपके लिए व्यवस्था की है, बहुत सुंदर व्यवस्था थी, बहुत से पकवान बनाए थे, व्यंजन बनाए थे, रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, लेकिन भगवान ने स्वीकार नहीं किया। उस समय दुर्योधन ने जानना चाहा कि आप क्यों नहीं इसे स्वीकार कर रहे हैं, क्या कारण है। तो भगवान ने बताया कि ऐसा बतलाया गया है कि जब कोई व्यक्ति शत्रु के यहां जाए तो ना तो उसे कुछ उसके यहां स्वीकार करना चाहिए, ना ही उसको भोजन कराना चाहिए। और जब दुर्योधन ने यह सुना तो दुर्योधन ने कहा कि मैं आपका शत्रु कैसे हो गया, आपकी और मेरी कोई शत्रुता नहीं है, मेरी शत्रुता तो पांडवों से है, आप मेरे शत्रु कैसे हो गए, और अगर आप मेरे शत्रु नहीं हैं तो आपको मेरा ये आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए, और अगर आप मुझे शत्रु मानते हैं तो इसको बात को समझाइए कि मैं कैसे शत्रु हूं। अर्थात दुर्योधन चाहता था कि कृष्ण को कष्ट में डाल दे, धर्म संकट में डाल दे, कृष्ण कैसे बतलाएंगे कि वो शत्रु है, उनसे उसने कोई शत्रुता नहीं की। तो कृष्ण वो तो स्वयं भगवान है, उनकी 64 कलाओं में से कला है कि वो बहुत निपुण है बात करने में, पटु हैं। तो कृष्ण उससे कहने लगे दुर्योधन से कि दुर्योधन, यहां पर कृष्ण इस वाद से, इस अपनी बात से भक्तों के साथ अपने संबंध को बतलाते हैं, और वो कहते हैं कि जिन 5 पांडवों की तुम बात कर रहे हो वो मेरी सांसों के समान हैं। जब मैं क्या व्यक्ति से सांस को अलग कर सकते हैं, और वे मेरा और उनका संबंध एक शरीर और आत्मा के संबंध के समान है जो कभी भी अलग नहीं होता। जब तक जीवन रहता है व्यक्ति, आत्मा और शरीर एक ही रहते हैं। तो कहने लगे कि ये जो पांडव हैं ये मेरी सांसों के समान है, मेरी आत्मा के समान है, और तुम उनसे द्वेष करते हो, तो इस दृष्टि से तुम मेरे शत्रु हुए। यहां पर भगवान आत्मीयता को समझाते हैं। आगे तो प्रसंग बहुत बड़ा है, हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन केवल यह प्रसंग इसलिए सुनाया कि कितने घनिष्ठ संबंध भगवान हम लोगों से रखते हैं, एक जीव से रखते हैं, कितनी आत्मीयता का संबंध रखते हैं। यह भगवान बतलाते हैं कि अपने प्राण भक्तों को मानते हैं। तो इस तरह का संबंध हम सबका भगवान से है, केवल भक्तों का नहीं, सबका है। भक्तों के संबंध को इसलिए बतलाते हैं क्योंकि भक्त उस संबंध को पुनः जागृत करने के लिए प्रयास करते हैं या अपने संबंध को जान जाते हैं। लेकिन भगवान का तो हर जीव से संबंध है। श्रील प्रभुपाद बतलाया करते थे कि एक ना एक दिन हर जीव को आध्यात्मिक जगत जाना है, तो सारे जितने जीव हैं वो जाएंगे, केवल कुछ इस जीवन में जाएंगे, कुछ लाखों जीवन बाद, कुछ करोड़ों जीवन बाद, लेकिन हर जीव जाएगा क्योंकि भगवान से उसका संबंध है और एक ना एक दिन उस संबंध को पुनः स्थापित करेगा। इसलिए ऐसा आत्मीयता का संबंध यहां पर हम लोगों को स्थापित करना चाहिए, घनिष्ठता का संबंध। और ये कैसे हो सकता है, ये घनिष्ठता का संबंध कैसे आएगा जब हम कम से कम यहां के जो हमारे संबंध हैं उस संबंध से थोड़ी सी अनासक्ति अपने अंदर उत्पन्न करें। हमारे अंदर कोई अनासक्ति नहीं है इन भौतिक संबंधों के प्रति, हम समर्पण भी कर देते हैं भगवान के लिए, लेकिन फिर भी आसक्ति बनी रहती है। और यह आसक्ति कोई जीवन तक नहीं रहती, मरने के बाद भी बनी रहती है। एक कथा बताई जाती है एक ब्राह्मण की। यह ब्राह्मण बहुत ही आसक्त था अपने परिवार से, और यह ब्राह्मण बार बार यही सोचा करता था, विचार करता था कि किस तरह से मेरे बाद मेरे परिवार का पालन होगा, क्योंकि बहुत गरीब था यह ब्राह्मण। और एक समय ऐसा हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद इस ब्राह्मण को एक स्वर्ण हंस का शरीर मिला। लेकिन भगवान ने कृपा की उसके ऊपर कि स्वर्ण हंस के शरीर में भी उसको अपने पूर्व जन्म की जो बातें थी वो याद रही। तो अब वो कहीं और स्वर्ण हंस के रूप में था, लेकिन बार बार उसको अपना परिवार याद आ रहा था कि कैसे मेरे परिवार के लोग अपना जीवन बिता रहे होंगे, मेरी पत्नी ठीक होगी कि नहीं होगी, मेरे बच्चों को कुछ खाने के लिए मिल रहा है क्या कि नहीं होगा। कितने आसक्त रहता है व्यक्ति, मृत्यु हो गई है, दूसरा शरीर मिल गया है, लेकिन फिर भी आसक्ति घर में है। तो एक समय जब उससे रहा नहीं गया तो वो उड़कर उस घर उस स्थान पर आया जहां पर उसकी पत्नी और बच्चे रह रहे थे, और उसने देखा कि उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको भीख मांगनी पड़ रही है अपना जीवन यापन करने के लिए। तो उस समय ब्राह्मण ने सोचा कि कितना बड़ा पापी हूं मैं, मैंने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया है कि मेरे अभी तक पत्नी और बच्चों के पास ठीक से खाने के लिए नहीं है। तो फिर एक दिन उड़कर अपनी पत्नी के पास गया और पत्नी से कहने लगा कि मैं वही ब्राह्मण हूं, मैंने दूसरा जन्म लिया है, मेरा एक एक पंख सोने का है, तो तुम ऐसा करो कि एक एक पंख निकाल लो, एक पंख निकालो और उसको बेच दो, उससे जो धन आएगा उससे थोड़ा थोड़ा आप घर बार चलाओ। तो एक पंख निकाल लिया गया और पत्नी ने बेचा, थोड़ा सा धन आया। ऐसे कर कभी एक दो तीन ऐसे ऐसे पंख निकाले जाते, और धीरे धीरे ये लोग बहुत धन हो गया इनके पास। और ब्राह्मण या ये हंस बड़ा प्रसन्न था कि मेरे पत्नी मेरे बच्चे कितने प्रेम करते हैं मुझसे। एक दिन पत्नी ने सोचा कि ये हंस कहता तो है कि मेरा पति है, लेकिन पक्षियों का कोई भरोसा नहीं है, कब उड़ गया क्या पता, और अगर उड़कर चला गया तो जितने पंख हैं वो भी चले जाएंगे। तो उसने एक दिन सोचा कि सारे पंख निकाल लेती हूं इसके। तो उन्होंने एक दिन उनको पकड़ा, क्योंकि वो तो बड़े आराम से रहते थे, उनको कोई भय नहीं था। तो उन्होंने एक दिन पकड़ा पत्नी ने और सारे पंख खींचने लगे, और ये चिल्ला रहे हैं मत निकालो मत निकालो, लेकिन वो खींचे जा रही है, और सारे पंख निकाल दिए। और उसने अचानक देखा कि जितने पंख थे वो सोने के रंग छोड़कर फिर से साधारण सफेद पंखों में बदल गए। और पति कहने लगा कि इस ये जो स्वर्ण हंस होता है इसको एक श्राप होता है कि अगर कोई जबरदस्ती पंख निकालता है तो वो पंख अपना जो गुण है उसको खो देते हैं। तो पत्नी ने सोचा अब ये बेकार हो गया, पंख भी सारे निकल गए, स्वर्ण के भी नहीं रहे, तो कचरे के डब्बे में उसको फेंक दिया, और वहां पर वो विलाप करता हुआ फिर से मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो देखिए ये आसक्ति है कि जिनके लिए वो सब कुछ करना चाह रहा है, सारी चीजें अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के पंखों को देना चाह रहा है, अर्थात अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रख रहा, ऐसे लोग भी क्या करते हैं, ऐसी आसक्ति का क्या लाभ। बलि महाराज जब प्रार्थना करते हैं, जब वामन देव ने उनका सब कुछ लिया था, तो उस समय वो बतलाते हैं, वो कहते हैं कि इस शरीर का क्या लाभ है, इस देह का क्या लाभ है जो मृत्यु के समय छोड़कर चला जाता है, रहता नहीं है, मृत्यु हो जाती है तो हमें जाना पड़ता है, छोड़ देता है आत्मा को, आत्मा उसे पकड़कर रखना चाहती है, छोड़ना नहीं चाहती है, कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन शरीर चला जाता है, हट जाता है, अलग हो जाता है, तो क्या लाभ है ऐसे शरीर का? ऐसे परिवार का क्या लाभ है? बलि महाराज बताते हैं कि ऐसे परिवार हैं जहां पर केवल दस्यु हैं, चोर लुटेरे हैं। व्यक्ति धन कमाता है भगवान की सेवा में लगाने के लिए, जो धन भगवान की सेवा में लगना चाहिए वो इन लुटेरों के द्वारा लूट लिया जाता है। पांचवें स्कंद में भी, पांचवें स्कंद में बहुत सुंदर अध्याय है, 14वां अध्याय हम लोगों ने पढ़ा है, फॉरेस्ट ऑफ मटीरियल एंजॉयमेंट, और उसमें बतलाते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने शरीर के खून को, पसीने को बहाकर धन कमाता है, लेकिन जो परिवार के लोग हैं बड़ी आसानी से उसको निकाल लेते हैं और व्यक्ति भी प्रसन्न रहता है, उसको कोई दुख नहीं होता। तो इस तरह से बलि महाराज कहते हैं कि क्या लाभ है ऐसे परिवार का कि जो चोर और लुटेरों का परिवार है, जो भगवान की संपत्ति है उसको वो लोग लूट लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि ऐसी पत्नी का क्या लाभ है जो केवल भौतिक बंधन को बढ़ाती है। व्यक्ति जब विवाह करता है तो क्या होता है? भौतिक बंधन बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती है, तो ऐसी पत्नी का क्या लाभ है? ऐसे परिवार, ऐसे समाज, ऐसे राष्ट्र का क्या लाभ है जो केवल हमारा समय इस भौतिक जगत में व्यर्थ कराते हैं? ये बलि महाराज समझा रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे परिवार से जब तक हम लोग आसक्त रहते हैं हम अपना संबंध भगवान से स्थापित नहीं कर सकते। और यहां पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस समय में ऐसा लग रहा है कि भगवान ने हमारी उपेक्षा कर दी है, भगवान हमारी ओर देख नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान सदैव हमारे कार्यकलापों के प्रति जागरूक रहते हैं। भगवान तो हैं, केवल प्रार्थनाओं के द्वारा, केवल अपने हृदय की तीव्रता के द्वारा हमें उन्हें पाना है। ये प्रार्थनाएं, ये तीव्रता, ये दिखलानी चाहिए। जब तक हृदय में तीव्रता नहीं होती है भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। बड़े बड़े आचार्य प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से कि किस प्रकार से इस जगत से हमें बचाइए। शंकराचार्य प्रार्थना करते हैं कि मैं बार बार मां के गर्भ में जा रहा हूं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मैं ऐसा शयन, एक आश्रय ले रहा हूं मां के जठर में, मां के गर्भ में। लेकिन वो प्रार्थना करते हैं कि ये जो जगत है बहु दुस्तारे, बहुत ही कष्टमय है, कृपया करके, कृपया पाहे, मुझे इस जगत से मुक्त कर दीजिए, पाहे मुरारे, हे भगवान श्री मुरारी मुझे इस जगत से मुक्त करिए। ये प्रार्थना शंकराचार्य जी करते हैं। आगे चलकर जब माधवेंद्रपुरी आए उन्होंने हमें सिखलाया कि कैसे भगवान से प्रेम करना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए एक व्यक्ति का। जब वो अपना देह त्याग रहे थे तो प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि हे भगवान, हे मथुरा के नाथ, हे दीनों के नाथ, ऐ दीन दयाद्र नाथ, हे मथुरा नाथ कद अवलोक्य से, आप कहां हैं, मैं कब आपके दर्शन करूंगा। ये माधवेंद्रपुरी प्रार्थना कर रहे थे। ये तीव्रता थी उनके हृदय में और उसी तीव्रता को उनके शिष्य अद्वैत आचार्य ने स्वीकार किया। प्रार्थना की उन्होंने भगवान से इस पृथ्वी पर आने के लिए, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, तुलसी दल को लेकर, जल को लेकर प्रार्थना की। और ऐसी चीजों को भगवान स्वीकार करते हैं, बेच देते हैं, विक्रीणेन स्व आत्मनाम, अपने आप को भगवान बेच देते हैं, भक्तेभ्यो भक्त वत्सलहा, क्योंकि वो भक्त वत्सल हैं इसलिए ऐसे भक्तों के हाथ में अपने आप को बेच देते हैं जो केवल श्रद्धा और प्रेम से तुलसी का दल और पानी, जल भगवान को अर्पण करते हैं। और अद्वैत आचार्य की तीव्रता या प्रार्थना के कारण हम लोग चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुन पा रहे हैं, क्योंकि उनके ही कारण चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर, उनकी तीव्रता को देखकर। और यही तीव्रता, यही प्रार्थनाएं आगे के आचार्यों ने दिखलाई। भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, वो बतलाते हैं कि ऐसे किसी एक व्यक्ति को भेजिए, ऐसा एक व्यक्ति आएगा जो सारे जगत में भगवान को प्रकट करेगा। और वो कार्य उनके ही पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य श्रील प्रभुपाद ने कर दिखलाया। अद्वैत आचार्य की प्रार्थना से भगवान प्रकट हुए थे गौरचंद्र के रूप में, और प्रभुपाद की प्रार्थनाओं से भगवान प्रकट हुए हैं हरिनाम के रूप में, और सारे जगत में वो इस समय भी अपना दर्शन दे रहे हैं, भक्त उनके दर्शन कर पा रहे हैं। प्रभुपाद जब जा रहे थे अमेरिका में, तो उस समय उन्होंने एक प्रार्थना की थी भगवान से। वो कह रहे थे कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, भक्ति ना ही, वेद ना ही, नामे खूब दारो, ना ही मेरे अंदर भक्ति है, ना ही वेदों का ज्ञान है मेरे अंदर, लेकिन भक्ति वेदांत नाम ये आप सार्थक करो, मैं सार्थक नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान की भक्ति, जिसको महत्व प्रभुपाद ने समझाया, अगर हम भक्ति करें तो सारे वेदों का शास्त्रों का अंत, शास्त्रों का सार हमें मिल सकता है। इसीलिए भक्ति वेदांत में पहले भक्ति आता है, बाद में वेदांत आता है। अगर हृदय में भक्ति नहीं है तो वेदांत नहीं मिल सकता। प्रभुपाद बताते हैं, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हैतुकम्। कि अगर हम भक्ति करें तो हृदय में वैराग्य और ज्ञान आ सकता है। तो यह प्रभुपाद की प्रार्थना का फल है कि प्रभुपाद कहते हैं जब जा रहे थे कि ये लोग इतने ज्यादा रजोगुण से आच्छन्न हैं कि इनको मैं क्या भगवान का ज्ञान दूंगा। यहां पर प्रभुपाद हम लोगों को कह रहे हैं कि हमारा घनिष्ठ संबंध है, हमें भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। ये ज्ञान हम लोग समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत जान रहे हैं, क्योंकि हमने भगवान के विषय में सुना है। इतना ज्यादा रजोगुण भारत में नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जब जा रहे थे तो ऐसे स्थान पर जा रहे थे जो रजोगुण से आच्छन्न था, भरा हुआ था, और वो प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि ऐसे लोगों को मैं आपका नाम देने जा रहा हूं, कृपया मुझे थोड़ी शक्ति दीजिए, और आप जैसा चाहें वैसा मुझे नचाइए, नचाओ नचाओ प्रभु, नचाओ से मते। तो ये प्रभुपाद की प्रार्थना का फल है कि आज हम लोग यहां इस स्थान पर बैठे हैं, श्रीमद् भागवतम का स्पर्श कर पा रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ, जैसे हमने पहले बताया कि भागवतम है, श्रील प्रभुपाद की कृपा है, गुरु हैं, ये शरीर है, इनका लाभ लेना चाहिए। और अगर हम इनका लाभ नहीं लेते हैं तो जैसे इस चीज को, इस तथ्य को जो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हालांकि आठ चीजें, ये आठ तत्व भगवान की भिन्न प्रकृति बतला रहे हैं, लेकिन वो अलग नहीं है। वो किसके लिए अलग नहीं है? भक्त के लिए, क्योंकि वो हर चीज में भगवान को देखता है, हर समय भगवान के दर्शन करता है। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। और ऐसा व्यक्ति जो सबको समान देखता है वो पंडित कहलाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। और ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति जब करता है तब वो अपना संबंध भगवान से स्थापित कर सकता है। श्रील प्रभुपाद यहां समझा रहे हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में हमें भगवान की श्रेष्ठता पर भी आश्रित रहना चाहिए और उनके साथ संबंध को जीवित करना चाहिए हर स्थिति में। ऐसा नहीं है कि किसी स्थिति में हम भगवान पर आश्रित रहें और बाकी स्थिति में अपने ऊपर आश्रित रहें, तब हम भगवान को न जान पाएंगे न भगवान की श्रेष्ठता को समझ पाएंगे। जैसे वो व्यक्ति जब वो भाग रहा था, लोग उसको पत्थर मार रहे थे और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान मुझे बचाओ। उसे पता था, श्रद्धा थी, भगवान आएंगे। थोड़े समय करता रहा, लेकिन जब भगवान नहीं आए तो उसने सोचा अब भगवान नहीं आएंगे, और घूमकर पत्थर उठाकर लोगों को मारने वाला था। तब देखा कि भगवान भी भागे जा रहे हैं पीछे, तो उसने भगवान से पूछा आप आए क्यों नहीं मुझे बचाने के लिए। भगवान ने कहा मैं तो आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि तुम्हें अपने ऊपर श्रद्धा ज्यादा हो गई है तो मैंने कहा मेरा यहां कुछ काम नहीं है, मैं वापस चलता। इसलिए हर स्थिति में, चाहे वो दुख हो या सुख हो, हमें भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। हर स्थिति को भगवान की कृपा मानना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ही हमारे नाथ हैं। और प्रार्थना भी हृदय से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम मुंह से तो प्रार्थना कर रहे हैं, ऐ दीन दयाद्र नाथ हे भगवान आप मेरे नाथ हैं, लेकिन हृदय में किसी और नाथ का स्मरण हो रहा है या नाथनी का स्मरण हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इसीलिए कवि कहते हैं, नाथ अनाथन काया है, ये जो काया है ये अनाथ है इस जगत में, तुम बिन कौन सहारा, एक आप ही हैं जो सहारा दे सकते हैं। तो इसीलिए समझना चाहिए कि इस जगत में केवल एक ही नाथ है, भगवान श्री कृष्ण, और अगर उनका हाथ हमारे ऊपर नहीं है, उनकी शरण में हम नहीं हैं, तो हम अनाथ हैं। प्रभुपाद एक बार एक श्लोक बतला रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें बहुत सारे जन्मों में माता पिता मिले हैं, अलग अलग जन्मों में हम लोग माता पिता ग्रहण करते हैं, माता पिता लेते हैं, हर जन्म में हर योनि में माता पिता है, पशु की योनि में भी माता पिता होते हैं, मनुष्य योनि में माता पिता हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत जन्मों में जन्मे जीव जो है माता पिता लेते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन वो बहुत दुर्लभ जन्म होता है जहां पर जीव कृष्ण को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार कर लेता है, ये बड़ा दुर्लभ है। तो इसीलिए इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को एक ऐसी नाव बनाएं जो हम आराम से सरलता से इस भौतिक जगत को पार कर पाए, तब तो हमारा मनुष्य जीवन सफल है। और अगर ऐसा नहीं हो और अगर हम भगवान का आश्रय स्वीकार नहीं करें तो हमारा जीवन व्यर्थ है, और यही सारे भागवतम का सार है। भागवतम केवल बतलाई गई है भगवान का गुणगान करने के लिए और जीव को प्रेरित करने के लिए कि वो भगवान का आश्रय ले, नहीं तो क्या आवश्यकता थी इस भागवतम की अगर ये सार नहीं है। क्योंकि परीक्षित महाराज वो मृत्यु के मुख पर थे, 7 दिन थे उनके पास, तो इसीलिए उनको ये बतलाना था कि सार में कि केवल भगवान का आश्रय यही जीवन का उद्देश्य है, और परीक्षित महाराज इस बात को समझ गए। लेकिन हम लोगों के पास समय है या नहीं हमें नहीं पता। अगर किसी व्यक्ति को बतलाया जाए आपको इतने दिन में मरना है तो वो सोच सकता है चलो मैं भगवान का आश्रय लूं। हम सब भी तो उसी स्तर पर हैं, कभी भी मर सकते हैं, कभी भी मृत्यु आ सकती है, तो इसीलिए तुरंत इसी समय भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान की सत्ता को स्वीकारना चाहिए और अपने हृदय से इस अहंकार को दूर करना चाहिए। जब तक अहंकार रहेगा, मिथ्या अहंकार जो हमें ये बतलाएगा कि हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं हैं, तब तक हम भगवान की शरण नहीं ले पाएंगे। और जिस समय जीव ये समझ जाएगा तब बड़े आसानी से भगवान की शरण ले सकेगा, भगवान को पुकार सकेगा, आचार्यों की प्रार्थनाओं को दोहराते हुए अपने हृदय को शुद्ध करते हुए भगवान के धाम वापस जा सकेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। Thank you.
Krishna Ballabha Girivaradhari Gopi Jana Ballabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Chari Yamuna Tira Vana Chari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Ballabha Girivara Dhari Gopi Jana Ballabha Girivara Dhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vana Chari Yamuna Tira Vana Chari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Jayo Radha Madhava Jayo Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskar. नित्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नहिष्टकी इदं भागवतं नामं पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तम श्लोक चरितां चकारा भगवान् ऋषि निःश्वसायस्य लोकस्य धान्यं स्वस्ति अन्यं महद् Before citing the Srimad Bhagavatam, which is the only means of conquest, let us offer a humble obeisances unto the personality of Godhead Narayan, unto Naranarayan Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. By regular attendance in classes of Srimad Bhagavatam and by rendering service unto a pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead is established as an irrevocable fact. The Srimad Bhagavatam is a literary incarnation of God. It is compiled by Srila Vyasadeva, an incarnation of God. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Bhagavatam, 7th canto, chapter 2, verse number 49.
अथ नित्यम् अनित्यम् वा नेह सोचन्ति तद्विदः नन्यथा सख्येत कर्तुम् स्वभाव सोचतम् इति अथ नित्यम् अनित्यम् वा नेह सोचन्ति तद्विदः नन्यथा सख्येते कर्तुम् स्वभाव सोचताम् इति अथ नित्यमनित्यं वा नेह सोचन्ति तद्विदः नन्यथा सख्यते कर्तुम् स्वभाव सोचताम् इति Translation. Those who have full knowledge of self-realization, who know very well that the spirit soul is eternal, whereas the body is perishable, are not overwhelmed by lamentation. But persons who lack knowledge of self-realization certainly lament. Therefore, it is difficult to educate a person in illusion. Purport. According to the Mimamsa philosophers, everything is eternal, nitya. And according to the Sankhya philosophers, everything is mithya or anitya, impermanent. Nonetheless, without real knowledge of Atma, the soul, such philosophers must be bewildered and must continue to lament as Shudras. Srila Sukadeva Goswami therefore has said to Parikshit Maharaj, Shrotavyadini Rajendra Ninam Shantim Shahastrasha Avashyatam Atma Tattvam Griheshu Grihamedhinam. Those who are materially engrossed, being blind to knowledge of the ultimate truth, have many subjects for hearing in human society. O Emperor, for ordinary persons engaged in material activities, there are many, many subject matters to understand because such persons do not understand self-realization. One must therefore be educated in self-realization so that under any circumstances in life, he will remain steady in his vows.
Shri
atha nityam anityam va neha sochanti tadvidaha nanyatha sakyate kartum svabhava sochitam iti. To ye thoda sa ajeeb lagte hain kyunki ye kahani jo hai Hiranyakashipu apne mata diti aur Rishabhanu Hiranyaksha ke patni ko santuna dene ke liye Hiranyaksha ki mrityu ke baad kaha ja raha hai. Parantu yahi Hiranyakashipu baad mein ja ke batayenge ki वही विष्णु जिसने मेरे भाई को मारा है, मैं उनका खून पीऊंगा. सो इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रोतव्यादिनी राजेन्द्र निनम शांति सहस्रश अवश्यताम आत्मतत्व गृहेशु गृहमेधिनम. जो आत्मतत्व के बारे में नहीं जानते हैं, जिनकी ध्यान आत्मा के ऊपर नहीं है, वो बहुत सारे विषयों के बारे में सुनते हैं और सुनने के लिए विषय रहते हैं उनके, परंतु उनको उससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि उनकी ध्यान जो है अलग अलग चीज़ों में बांटा जाता है. व्यवसायित्मिक बुद्धि एक गुरु नंदना बहुशाखाई अनंतश्च बुद्धय व्यवसायिनम. क्योंकि उन लोगों के ध्यान में बहुत सारे विषय हैं. श्रोतव्यादिनी राजेन्द्र निनम शांति सहस्रशः, बहुत सारे विषय रहते हैं उनके दिमाग में. थोड़ा आध्यात्मिक भी रहते हैं, थोड़ा विषय भी रहते हैं, थोड़ा अर्थनीति भी रहते हैं, थोड़ा क्रीड़ा भी रहते हैं, क्रिकेट भी रहेंगे, फुटबॉल भी रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सब कुछ रहते हैं. तो इसी हिसाब से उनको जितने ये सब चीज़ जितने उनके बढ़ा लेंगे, वो उतने ही उनके तकलीफ होते हैं आत्मा के ज्ञान के बारे में जानने के लिए. वो से श्लोक बिफोर दिस निनाम शांति सहस्र सा आई फॉरगेट दैट एनीवे द श्लोक आफ्टर दिस इज निद्रया ह्रियते नाक्तम विवायेन च वावयः दीवाचा हरते होया राजन कुतुम्ब भरने न भा. तो व्हाट्स द वर्स बिफोर दिस शताम अपने तत्व श्रोतव्यानि राजेन्द्र. एनीवे द फर्स्ट वर्स इज आल्सो वेरी नाइस. एनीवे इट्स नॉट सो. तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि भारत में ये प्रचुर मात्रा में इस चीज़ को देखा जाता है. लोगों के आत्मा के बारे में भी ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा उसके आध्यात्मिक के बारे में बात करेंगे, एक ही मुंह से क्रिकेट के बारे में भी बात करेंगे, एक ही मुंह से फुटबॉल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अर्थनीति के बारे में बात करेंगे, और हर चीज़ ये चंद्र और तारों के नीचे जितनी भी चीज़ हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, अपने बुद्धिमत्ता के बारे में बता दिखाते हैं सबको सामने. दे शो देयर सो कॉल्ड इंटेलिजेंस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन बाय टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग अंडर द स्काई. तो हिरण्यकशिपु भी इसी तरह से बात कर रहे हैं अपने माता और अपने बहनोई, है ना. नहीं नहीं भतीजे बहनोई आई थिंक और सिस्टर इन लॉ, उनको सांत्वना देने के लिए हिरण्यकशिपु बता रहे हैं. परंतु भगवान भगवद गीता में इसको प्रधानता दे रहे हैं. एक श्लोक में ही भगवान इतने सारे बात बताते हैं. हम काफी दिनों से एक श्लोक की चर्चा कर रहे हैं गीता के. यम ही न व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम समृतत्वाय कल्पते. तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के बारे में बताते हुए बताए एक
खास तरह से उनकी खासियत है कि ये एक एक शब्द को बहुत सारा बहुत बार दोहराते हैं. तो इस श्लोक में बताते हैं यम ही न व्यथयंती थे व्यथा. इस जगत में जो लोग हम इस जगत में हैं, जो नित्य लोग अनित्य जगत में हैं, हम लोग नित्य हैं लेकिन हैं अनित्य जगत में. जो ये अनित्य जगत में नित्य लोग रहते हैं उनको व्यथा सहना ही पड़ेगा. ये एक व्यथा है. यम हीन व्यथा अंत्यते, व्यथा अंत, व्यथा अंत्यते. व्यथा दोनों तरह के होता है. अगर इस अनित्य जगत को भोगने के लिए कोशिश करें, इसमें अलग अलग तरह की व्यवस्था करें ताकि इस जगत को हम लोग अच्छी तरह से रह सकें, बहुत व्यथा होता है. घर परिवार वगैरह वगैरह बढ़ा के बहुत बढ़ा लेते हैं. हाल ही में दो तीन दिन, कुछ दिन पहले हम कुछ लोगों से मिल के आए हैं, बहुत परम, 10-15 साल के बाद मिले उनको. तो मिलने के बाद अभी उन लोगों की उम्र काफ़ी हो चुके हैं. 10 साल पहले जब मिले थे तो उनको थोड़ा सा उम्र कमती थे, तो शरीर में तभी भी ताकत थे. तो बहुत फैला लिया इस जगत की कार्यवाही. इस जगत में अपना घर द्वार अलग अलग तरह से अपने व्यवस्थापन को बहुत फैला लिया. अभी जब उम्र हो चुके हैं, जितने फैलाया उतने ही दर्द हो रहा है. इस जगत में जितना ही हम फैलाएंगे अपने आप को उतना ही ज्यादा व्यथा होता है. व्यथा तो आएगा ही इस जगत में. इस जगत में अलग अलग तरह की हमारे इच्छाएं रहते हैं, हमारे आकांक्षाएं रहते हैं, और उस हिसाब से इस जगत में हमें अपने आप का विस्तार करते हैं, व्यथा बढ़ाते हैं इस जगत में और बढ़ाते हैं इस कार्यवाही. और कार्यवाही बढ़ाने के बाद जब एक उम्र आते हैं तो उतना संभाला नहीं जाता है. मन बुद्धि शरीर शक्ति से नहीं संभाला जाता है, तो वही चीज हमको व्यथा देते हैं. जय श्री राधा गोपालानंद की, जय गौण थाई की. तो वही चीज हमको, वही घर का फर्नीचर जो शादी में मिले हुए थे या किसी ने बहुत बहुत अच्छी तरह से बनाए हुए थे घर के फर्नीचर, क्या बोलते फर्नीचर को हम हिंदी में, कुछ शब्द हैं फर्नीचर को, घर के सामान फर्नीचर वगैरह जो हैं, वही जितना बढ़ा के रखे हैं वही व्यथा देते हैं. हर एक चीज़ याद दिलाते हैं हमको हमारे इस जगत की कार्यवाही का, एक स्मरण रहते हैं. और इस जगत में अलग अलग संबंध हम लोग स्थापित करते हैं. स्थापित करने के बाद थोड़ा समय के बाद उसको विच्छेद होना ही है हमको. मृत्यु से विच्छेद होना है, नहीं तो पहले ही विच्छेद होना है किसी न किसी तरह से. तो विच्छेद में बहुत ही व्यथा होता है, बहुत व्यथा होता है. जब वही घर के लड़के निकल जाते हैं कहीं नौकरी में या आश्रमों में निकल जाते हैं तो बहुत व्यथा होता है. व्यथा सहन नहीं होता है माता पिता को, है कि नहीं? आंखों में आंसू आते हैं, कहाँ जा रहा है, इतने क्या बोलते हैं प्रेम से पाले हैं, बड़े किए हैं, अभी वही निकल के जा रहा है. वो अपने जीवन जीने के लिए जा रहा है, इनके जीवन अंत होने के लिए आ रहे हैं. उसमें बहुत व्यथा होता है, बहुत ही व्यथा होता है. दुख लगते हैं, जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, खाने के लिए लोग जाइए खाने के लिए लेके जाना रास्ता पे, देख तुम्हारा चमड़ा जो है बहुत काले हो गए, कुछ मलम पत्ती लगा दे इसमें, ये ले जा ठंडा लगेगा, थोड़ा सा गर्म कपड़ा लेके दे. ये सब करके हमारे जो इस जगत के जो संबंध हुए संबंध हैं उसको और गहरा करते हैं और अंत में यही सब व्यथा देते हैं, बहुत व्यथा देते हैं. हर एक चीज व्यथा देते हैं. यम ही न व्यथयंती थे पुरुषम पुरुषार्षभ. अर्जुन को बोलते हैं पुरुष ऋषभ, ओ द बेस्ट ऑफ मैन, पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष ऋषभ, तुम ये व्यथा को सहन करना सीखो. क्योंकि इसके इससे पहले का श्लोक कौन सा है, मत्र स्पार्शिष्ट कौन्तेय सितोष्ण सुख दुखदा,
agamo payo nityastam stitikshashva bharata. To is jagat mein humko vyatha ko sahan karna hi hai. Do tarah ki vyatha hai. Jo sambandh hum log jode hain, usse jo vyatha milna hai, usko sambandh sahna hi padega ek na ek din. Upay to nahi hai kuch. Dusri tarah ki vyatha. Agar ye vyatha se aapko sahan karna mushkil hai, to dusri tarah ki vyatha sahan karna padega. Agar aapko amrit paan karna hai, to sa amritatvaya kalpate. If you want to drink the nectar, you have to tolerate the happiness and distress of this world. There's no other way. Nahi hoga. There's no other way. Dusri tarah ki vyatha, subah subah jaldi uthke, thanda pani se nha ke aana, jab karna, wo bhi ek vyatha hai. Yam hi na vyathayanti yate vyatha. कोई अच्छे स्त्री हैं, देख रहे हैं तो उनके संग करने के लिए इच्छा करते हैं मन, उसको रुकना पड़ते हैं व्यथा. हमारा आदत है, पुराने आदत है. कुछ अच्छे खान पान की चीज देखते हैं तो खाने के लिए इच्छा करते हैं लेकिन उसको रुकना पड़ता है व्यथा. वो भी व्यथा है. तो अगर ये व्यथा सहन करने के लिए सीखें तो हम लोग जो शास्त्र में दिए गए हैं कार्य को करें उसमें करने के लिए भी व्यथा है. शास्त्र में दिए गए हैं पंचम शोधो वनम व्रजेत, 50 साल की उम्र में वन में चला जाना चाहिए. वो बहुत व्यथा होता है, बहुत ही व्यथा है. लेकिन अंत में सर सर के खींच खींच के जीवन में जिंदगी में घर में सर सर के अपने ही संबंधों को टूटते हुए देखते हुए, अपने ही चीजों को नहीं संभालते हुए देखते हुए बहुत व्यथा आते हैं. अपने बनाए हुए घर को जब संभाला नहीं जाता है, बिखर जाते हैं तो बहुत व्यथा होता है. तो वो व्यथा सहने से अच्छा है कि आगे पहले ही घर से निकल जाए, पहले ही घर से निकल जाए, क्योंकि व्यथा तो आने वाले ही हैं, तकलीफ तो होने वाले हैं, व्यथा होने वाले ही हैं. तो क्यों ना पहले ही उससे तैयारी करें. माँ की मासूम मुंह, रोते हुए मुंह कौन देख सकता है. चुप चुप के जब रोती है ऐसा ऐसा करके कौन रोक सकते हैं. लेकिन पहले उसको काटना है क्योंकि अंत में तो वो तो होना ही होना है. श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में अकेले माँ को, वो भी कौन माँ, सच्ची माता जैसे माँ, और विष्णुप्रिया जैसे पत्नी. विष्णुप्रिया देवी जब महाप्रभु निकल रहे थे घर से तो पकड़ के बोले, हे प्रभु आप अपने हाथ मेरे सर पे ऊपर दे के बोलो कि आप जा रहे हैं क्या सचमुच. तो महाप्रभु ने क्या बोला, हम लोग शरीर नहीं हैं, हम ये आए हैं इस जगत में जैसे यात्रा में कोई लोग एकत्र होते हैं, कोई खत पानी पीने के जगह पे सब लोग इकट्ठा होते हैं और बाद में फिर निकल जाते हैं. तो इसी तरह से हमको व्यथा तो होना ही है. जो नहीं चाहते उसको भी व्यथा होने वाले हैं. तो इसीलिए बोल रहे हैं पहले ही वो व्यथा को सहन करने के लिए सीखो. ट्रेनिंग सहने के लिए सीखना ही पड़ेगा, पहले ही उसको काटना पड़ेगा. यही है गांठ इस जगत का, ये गांठ है इस जगत का. देयर आर दीज नॉट्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड गेट नॉटेड लाइक दिस, वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट, निकालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं. वो सबको पहले काटना सीखना चाहिए. जितने ही बढ़ाएंगे इस जगत को, इस ये सबको, उतने ही हमको व्यथा देने वाला है. और ये जैसे इस श्लोक में बताते हैं, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निनम शांति सहस्रश अपश्यताम आत्मतत्वम. अपश्यताम, जो नहीं देख रहे हैं इस बात को, अपश्यताम आत्मतत्वम, आत्मा के तत्व को नहीं देख रहे हैं. जो ये आत्मा के तत्व को नहीं देख रहे हैं उनको गृहेषु गृहमेधिनम, घर को ही अपने केंद्र बना के रह रहे हैं. लेकिन व्यथा उनको भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो अपने गृह को मेधी बना के रह रहे हैं, सेंटर बना के, केंद्र बना के रह रहे हैं, उनको व्यथा नहीं होने वाले हैं। उनको भी व्यथा होने वाले, उनको सबसे ज्यादा व्यथा होने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण हम को अतिशय कृपा करके, बहुत ही कृपा करके हमको ये व्यथा से बचाने के लिए भगवद गीता जैसे शास्त्र दिए हैं, ताकि ये व्यथा हम लोग इस व्यथा को सहन करें और इस व्यथा से मिले हुए जितने भी दुख हैं वो दुख से निकल सकते हैं। क्योंकि हर साल हर जीवन यही व्यथा से दूसरे एक जीवन लेते हैं। एक जीवन मिले हैं, उसके बाद ये व्यथा मिलते हैं, इस व्यथा में हृदय टूट जाते हैं, तो वो उसको संभालने के लिए दूसरा सपन रचाते हैं हम लोग। वी टेक अनदर ड्रीम टू गेट रिड ऑफ वन सोरो अनहैप्पीनेस, वी एंटर इनटू अनदर ड्रीम, एक दूसरा सपन बनाते हैं हम लोग। ये व्यथा हो रहा है, नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे सोचते हैं वो लोग, ऐसे कुछ करना चाहिए, दूसरे कुछ करना, वो सोच में ही उनको वही स्मरण में आ जाते हैं और उसी से और दूसरे एक शरीर ले लेते हैं और फिर से नया तरह के व्यथा शुरू करते हैं। वहां पर सोचते हैं कि इस जीवन में ऐसा हो गया, अगले जीवन में मैं अच्छी तरह से करूंगा। तो इसी तरह से लोग व्यथा के पास व्यथा मांगते जाते हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे बहुत ही कृपा करके भगवद गीता और श्रीमद भागवतम जैसे हमको शास्त्र दिए हैं, ताकि ये व्यथा से हमको बच जाए। क्योंकि ये व्यथा से अगर हम लोग अपने आप को बचाने के लिए कोशिश नहीं करें, या दूसरे को भी बचाने के लिए कोशिश नहीं करें, यही सबसे बड़ा हिंसा है, अपने के लिए भी हिंसा है। दिस इज द ग्रेटेस्ट डिजीज। किसी के बार बार बीमारी हो रहे हैं तो उसको ठीक करवाने के लिए कोशिश नहीं करना, इट इज अ ग्रेटेस्ट हिंसा, सबसे बड़ा वायलेंस, सबसे बड़ा हिंसा है। हर व्यक्ति इस जगत में अनित्य चीजों के ऊपर दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सोच रहे हैं वही सब उनके लिए है। देह अपत्य कलत्रादेशु असत्सन्येश आत्मसन्येश असत्सपि तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन अपि न पश्यति तेषां प्रमत्त निधनम, निधन होने वाला, सब खत्म होने वाला, इट्स ऑल गोइंग टू फिनिश व्हाट एवर यू रनिंग फॉर। देह आपत्य कलत्रादेश आत्मसन्नेश असत्सपि, ये मेरे सैन्य है, दिस इज माय सोल्जर्स। So Krishna is saying, you are not to be considering those as your soldiers, those as your friends, those as your protectors. Usko nahi samajhna hai tumhare rakshakarta, mere bandhu bandhav karke. Bhoktaram yagyatapasam sarvalokamaheshwaram suhridam sarvabhutanam jyatva mam shantim rishchati. Bhagavan hriday se bol rahe hain, bahut karuna se bol rahe hain, suhridam main. भगवान बोले मैं तुम्हारा सुहृद हूं, मुझे क्यों भूल रहे हो, व्हाई यू फॉरगेटिंग मी एज योर सुहृद, क्यों भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा सुहृद हूं, दूसरे नहीं है। जब एक व्यक्ति, एक बच्चा यहां पे जैसे यमराज बता रहे हैं, कोई छोटा लड़का ऐसे रास्ता में रहते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ट्रेन स्टेशनों में रहते हैं, वो लोग भी खाने के लिए अनाथ है, दे हैव नो फादर मदर, लेकिन उनको भी देख रेख होता है। जंगलों में प्राणियों को देख रेख हो रहा है, कौन देख रेख करते हैं उनको, उनके तो कोई समाज नहीं है देख रेख करने के लिए। जैसे और एक उदाहरण दे रहे हैं, एक से दूसरे उदाहरण दे रहे हैं, घर में अच्छी तरह से रखा हुआ धन भी कोई चोरी हो जाता है, लेकिन कभी रास्ता में फेंका हुआ धन भी मिल जाता है भगवान की इच्छा से। तो ये सब भगवान की खेल हैं, भगवान चाहते तो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए भगवान बता रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, हर चीजों की अंतिम लक्ष्य मुझे बनाओ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भोज आनंद खुद के लिए मत लेना, मेरे लिए करना, कुछ कार्य करना है तो भोक्तारम यज्ञ तपसा, यज्ञ करना है, दान देना है, कुछ भी देना है तो मुझे प्राप्त करने के लिए करो, ये मुझे संतुष्ट करने के लिए करो। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, इस जगत में आपके कोई लोक नहीं है, आपके कोई घर नहीं है, कहां जाएंगे आप? वो जहां जा रहे हैं वहां तो कोई, वो आपके नहीं है, वो भी भगवान के ही घर है, वो भी पालन कर रहे हैं भगवान ही स्वयं, दूसरे कोई पालन नहीं कर सकते वो घर को भी, उस घर को चलाने के लिए भी भगवान की कृपा जरूरत है। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम, मैं ही सबकी सुहृद हूं, आई एम द वेल विशर ऑफ एवरीवन। तो जब तक ये समझ में नहीं आते, हम लोग कितने भी यहां इस जगत में घूमते रहे, कार्य करते रहे, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र, हर रोज लोग कितने लाख लाख कॉपी न्यूज़पेपर के बिकते हैं, रास्ता रास्ता में खरीदते हैं, लेकिन वही न्यूज़पेपर अगले दिन कोई 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 मायने ही नहीं रखते, इतना इम्पोर्टेंट है जिस दिन वो प्रिंट होता है, बहुत न्यूज़पेपर व्हेन इट इज प्रिंटेड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉर्निंग बाय द इवनिंग इट हैज नो वैल्यू, शाम तक वही खबर खबर कागज का कोई वैल्यू नहीं, कोई मूल्य नहीं, कौन खरीदेगा दो चार रुपया देके, सुबह सुबह इतने हैं, अनित्य। तो इस जगत का भी यही पाल चीज है, जो चीजों को अभी हम लोग इतना महत्व दे रहे हैं, जीवन के अंत में उसको कोई महत्व नहीं होता, बिल्कुल महत्व नहीं होता। यही हमारा जीवन, अभी जितने महत्व ले रहे हैं, जितनी चीजों को हम लोग महत्व दे रहे हैं, खास तरह से शरीर को और शारीरिक संबंधों को, वही जीवन के अंत में, जीवन की जब सांझ ढलेगी, सूर्य जब अस्त होगा इस जीवन का, तो इस जगत को वही चीजों को कोई मायने नहीं है, इट विल हैव नो मीनिंग, कोई मायने नहीं रखते हैं। तो इसीलिए जो है भगवान इसीलिए बताते हैं, यम ही न व्यथयंती थे, व्यथा व्यथाते रहेंगे, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निनम शांति सहस्त्रश, बहुत सारे विषयों में हम लोग ध्यान देते हैं, अभी अपना आप ध्यान लगाते हैं, लेकिन अपश्यताम आत्म तत्व, इस शरीर को कौन चला रहा है, शरीर में कौन है जो जिसके कारण इस शरीर चल रहे हैं, कौन सुन रहे हैं शरीर के अंदर से, हुज लिसनिंग विद इन दिस बॉडी, हुज सीइंग विद इन दिस बॉडी, कौन इस शरीर के द्वारा देख रहे हैं बाहर। हम लोग कभी कभी सोचते हैं, हमने ठीक से नहीं खाया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, खाना पीना में इतने ध्यान देते हैं, लेकिन ये शरीर खाना पीना के शरीर भी छोड़ के जाना पड़ेगा, तो खाना पीना भी ऐसा ही करना चाहिए ताकि हम लोग आत्मा को देख सकते हैं, तो सात्विक कार्य करना चाहिए, सात्विक कार्य अगर नहीं किया जाए, शरीर को पेट को ठीक से भराया जाए, खाली सिर्फ पेट भरा जाए तो कोई काम का नहीं है, या कुछ शरीर के अलग तरह के देखरेख में पूरा जिंदगी बिताया जाए तो कोई फायदा नहीं है। हमको आगे बढ़ना है, आगे देखना है कि आत्मा को कैसे हमको पहचान, हर वक्त आत्मा के ध्यान पे रहना है। अपश्यताम आत्म तत्व, आत्म तत्व को जानना चाहिए, आत्म तत्व को कैसे जान सकते हैं, जब हम लोग हर वक्त श्रवण और कीर्तन में अपना ध्यान लगा के रखें, कैसे रहने से, कैसे इस जीवन को रखने से मुझे स्मरण श्रवणम और कीर्तनम करने के लिए कोई असुविधा नहीं होता है, मेरे खान पान, मेरे रहन सहन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, हर चीज ऐसा करना चाहिए ताकि मुझे श्रवण श्रवण और कीर्तन में कोई व्यघात नहीं हो। अगर हम लोग खान पान में या हमारा रहन सहन में कुछ ऐसे कार्य होता है जिससे हमारा श्रवण कीर्तन सही तरह भगवान के स्मरण नहीं हो रहे हैं, वी नॉट एबल टू रिमेम्बर भगवान हमारा सर्वश्रेष्ठ है, सर्व कुछ है, यही हमको अगर याद नहीं रहता है बार बार हर क्षण, तो उसी को माया बोला जाता है, when we're not able to remember Krishna all the time, every minute that he is our protector, he is our wohi mera palan karta hai, wohi mera rakshak hai, wohi srishti karta hai, wohi srijan karta hai, wohi palan karta hai, wohi na sanghar karne wale hai. Har shan jab yaad nahi rehta hai, jis shan yaad nahi rehta hai, usi ko maya bola jaye. He is in all things. Tumi sarveshwareshwaro Brajendra Kumar. तो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर भी अपने गीत में ब्रजेंद्र नंदन भजे जे जन सफल जीवन तार, ब्रजेंद्र नंदन भजे जे जन सफल जीवन तार. वो कैसे भजन करते हैं भगवान का, वो जानते हैं कि हर क्षण मुझे भगवान की अलावा कोई मुझे बचा नहीं सकते हैं, मुझे पालन भी नहीं कर सकते हैं, और संहार भी करना है तो वही करने वाले हैं. हर वक्त मैं खा रहा हूं भगवान की कृपा से, मैं सांस ले रहा हूं भगवान की कृपा से, मुझे दिखाई दे रहा है सब भगवान की कृपा से, मैं कुछ कार्य में सफलता प्राप्त कर रहा हूं वो भी भगवान की कृपा से, और मुझे असफलता भी मिल रही वो भी भगवान की कृपा है. और इसीलिए मेरे जितने भी मेहनत है, जितने भी ताकत है, संपूर्ण तरह से भगवान को ही अर्पण करना चाहिए. तो इसी तरह से जब हम लोग रहते हैं तब ब्रजेंद्र नंदन भजे जेई जनो, यही भजन है. दिस इज भजन. ये भजन नहीं करके, ये शरीर 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 करके जब रहेंगे और इस जगत 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 करके रहेंगे तो सिर्फ व्यथा, सिर्फ व्यथा. इसीलिए बोलते हैं श्रोतव्यादि राजेंद्र निनाम शांति सहस्र सा, बहुत सारे चीजों को देख रहे हैं. लेकिन भगवद गीता में कृष्ण जब ये बताते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भास समाधिस्य केशव, जब ये बताते हैं भगवान, तो इसके प्रत्युत्तर में भगवान क्या बताते हैं बहुत सुंदर तरह से आप देखिए इसको. प्रजाहति यदा कामन सर्व पार्थन मनोगतान आत्मन्य एवात्मन तुष्ट. ये बाहर के जगत में तुम तुष्टि नहीं मिलने वाले, आत्मन्य एवात्मन तुष्ट. आप संतुष्ट होना चाहिए कि आप आत्मा है, क्योंकि इस जगत के कुछ भी चीज आपको आत्मा नहीं बना सकते. आत्मा की जो स्थिति है वो ही रहने वाले हैं, उसको ना बढ़ोतरी होता है ना कमती होता है, ना उसके कुछ रहन सहन बदलते हैं. आत्मा आत्मा ही रहते हैं. द सोल रिमेन्स द सोल. इस जगत के दूसरे दूसरे चीजों का आके उसमें लगाने से वो आत्मा को कुछ कुछ विशेषता नहीं मिलता है. कुछ उसका रहन बदल जाता है, कलर बदल जाता है. इसको कुछ ज्यादा उपाधि दे दे को आत्मा के क्या कुछ उसके जो व्हाट इट्स नेचर, उसके जो स्वभाव है उसको कुछ बदल जाते हैं, नहीं बदलते, वैसे रहते आत्मा. तो आत्मन एवत्मन तुष्ट. तो ये बताते प्रजाहति यदा कामान, उससे आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. इसीलिए भगवान आगे भी बताए हैं दूसरे अध्याय में, अलग अलग तरह से भगवान यही चीज को बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को. अच्छेदो यम अदायो यम अक्लेदो शोष एव च नित्य सर्वगत स्थान अचरोयम सनातना. उसके कोई तब्दीलियां नहीं होते हैं, इट डज नॉट चेंज, उसमें कुछ विकार भी नहीं होते. तो आत्मा को दूसरे बाहर के चीज लाके उसके ऊपर थोपने से, आत्मा के एक आदमी का शरीर अगर बड़ा हो गया तो आत्मा बड़ा नहीं हो जाता है, आत्मा का वही साइज रहता है. बालस्य सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च. अगर आत्मा को ज्यादा पैसा मिल गया तो वो कुछ बड़ा नहीं हो जाता है, वो उतने ही रहते हैं. बाल के 10,000 भाग के एक भाग ही रहता है. तो भगवान ये बता रहे हैं कि ये जब समझ जाएंगे, यही बोलते हैं आत्म तत्व, ये आत्मा के ज्ञान है. यदा संहरते चायम कर्मोंगने वसस इंद्रियानि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहरस्य देहिनम रसवर्जम रस उपिश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये जब रस मिलेंगे कि मुझे इस जगत का चीजों से मेरे कोई विकार, मेरे कोई अदल बदल नहीं होने वाला है, आत्मा की कुछ बदली नहीं होने वाला है इस जगत की विषय से, आत्मा वैसे ही रहने वाले हैं, उसमें क्या फर्क आने वाला, क्या तब्दीलियां आने वाले हैं, क्या तब्दीलियां ला सकते हैं हम लोग इस आत्मा का, कुछ ला सकते हैं अच्छे कपड़े खरीद करके पहनने से आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आत्मा को, ये शरीर या इस जगत के बारे में इतने सारे कोशिश करने से क्या फायदा मिलने वाला है हमको, तो बार बार भगवान ही समझा रहे हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तो इस ये बात को समझने के लिए बहुत तानी सर्वाणी संयम्य युक्त युक्त आसीत मत्प्र वशीवस्यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बोल रहे हैं या फिर से वही चीज, वशीवस्य इंद्रियाणि, इंद्रियों को सम्मन, इंद्रियों को सहन करने के लिए सीखो, इंद्रियों को जो क्या बोलते वेग है, जो उनके डिमांड्स हैं उसको सहन करने के लिए सीखिए। इंद्रियों को उसको व्यथा होते हैं, उसको इंद्रियों को जो वेग है उसको, जब उसके क्या बोलते हैं मांगे हैं, उसको जब मांगे पूरा नहीं किया जाता है तो उनको व्यथा होते हैं हमको, देयर इज लॉट ऑफ डिफिकल्टी, बहुत व्यथा होते हैं। अरे क्या मुझे कल अभी खत्म कर देते हैं, इच्छा इतना आ रहा है बस पूर्ण कर देते हैं एक बार, उसके बाद भगवान के भजन करेंगे, ऐसे नहीं होता। यह एक बहुत बड़ा माया है, उसको सहन करना, यम ही न व्यथयन्ति ते व्यथा, वो व्यथा को सहन करने के लिए सीखना चाहिए। यम ही न व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम। तो जब ऐसे धीर होंगे देन ओनली यू कैन, तभी अमृत के पान कर सकते हैं, अमृत स्वाय कल्पते। तो व्यथा तो होंगे ही, तो भगवान बार बार यही चीज बता रहे हैं, और जब भगवान अंत में बताते हैं सर्वधर्मां परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरा ही, ओनली माई इंस्ट्रक्शन, भगवान के सिर्फ निर्देश को पालन करो, माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरे ही निर्देश को पालन करो। व्हाट्स दैट वर्स, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म को क्या है, जो भगवत प्रणीत है, जो भगवान बता के गए हैं वो धर्म है, बाकी सब अधर्म है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं सर्वधर्मां परित्यज्य, बाकी सब मनुधर्म है। धर्म क्या है, यम ही न व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम, इस जगत का सुख दुख से विचलित नहीं होना, धीर बनो। आत्मा क्या है वो समझो। न जयते म्रियते व कदाचिन नायंग भूतवा भविता भान भूय अजो नित्य शाश्वत यम पुराणो न हन्ते हन्यमान शरीरे। शरीर को नहीं नाश किया जा सकता है, आत्मा को नहीं नाश किया जा सकता है, शरीर तो नाश्वर है। सर्वधर्मान परित्यज, बाकी सब धर्म को छोड़ो, बाकी सब अनित्य धर्म है। मूल धर्म क्या है, आत्मा के धर्म। यम ही न व्यथयन्ति ते, ये धर्म को पालन करने के लिए व्यथा होता है, गिव्स लॉट ऑफ पेन, शरीर में बहुत ही दुख होता है, परंतु ये दुख को सहन करने के लिए सीखें, तभी अमृतत्वाय कल्पते। अगर अमृत चाहिए तो, अगर अमृत नहीं चाहिए, नरक में जाना है तो चाहिए, जो भी मिलता है खा लो, कोई खाना पीने में कोई रोक टोक मत करो, कुछ भी मिले खा लो, कुछ भी कर लो, जो भी मन में आए कर लो, जाएंगे कहां, नरक में, और तब व्यथा वहां पे भी सहना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, यू विल हैव टू सफर एनीवेज। आपको ऐसे भी दुख सहनाएं हैं, जब रो रो नरक में वो कुत्ते लोग आपके शरीर खाएंगे फाड़ फाड़ के, तो कौन सहेंगे, हम लोग को सहना पड़ेगा। तो इसी जगत में वो सहने से बेहतर है पहले सहने के लिए सीखे, इंद्रियों को जो मांग है उसको व्यथा होता है, उसके दर्द होता है, उसको सहने के लिए लेकिन वो सहे तो अमृत मिलेगा, अगर नहीं सहे तो विष मिलने वाला है। तो बात हमारे ऊपर है। तो इसीलिए ये थोड़े श्लोक, इससे कुछ श्लोक पहले हाँ 46 श्लोक